हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रिदांश ने तंज भरे लहजे में आरना की तरफ देखते हुए कहा, वैसे तुम्हें अपने इस मासूम से दिखने वाले चेहरे को यूज करके लोगों को अच्छे से बेवकूफ बनाना आता है, और मज़े की बात तो ये है कि ज़्यादातर लोग तुम्हारे इस चेहरे से आसानी से धोखा खा भी जाते हैं। वो सख्त भाव से बोला, लेकिन एक बात याद रखना, मैं रिदांश अग्निहोत्री हूँ, तुम्हारे खून की फितरत को अच्छे से जानता भी हूँ और समझता भी हूँ। और हाँ, एक बात और, मेरी माँ को तुमने चाल चलकर भले ही अपनी लत लगा दी हो, लेकिन तुम अकेले में मेरी माँ के आसपास भी नहीं भटकोगी, क्योंकि तुम पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, रिमेम्बर दिस। इतना कहकर रिदांश वहाँ से चला गया, और आरना गुस्से, हैरानी और असमंजस के मिले जुले भाव से उसे जाते हुए देख रही थी। रिदांश जब नीचे पहुँचा तो आयुष अपने सामान के साथ निकलने के लिए तैयार खड़ा था। रिदांश ने आयुष से कहा, वैसे तो कुमार ने तुम्हारे हिसाब से ही सारा इंतजाम कर दिया है, मगर फिर भी अगर कोई कमी हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल कर देना। जी भाई, आयुष ने कहा। प्रिशा उदास होकर बोली, मैं आपको बहुत मिस करूंगी भाई। आयुष ने प्रिशा के गले लगते हुए कहा। मी टू, नम्या ने आयुष के गले लगते हुए कहा। चलो ध्यान रखना अपना, और वहाँ जाकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, इधर उधर की बातों पर नहीं। आयुष ने नम्या के गले लगते हुए कहा, तुम तो जाते जाते भी सिर्फ बातें ही सुनाना। टेक केयर, नम्या मुस्कुरा कर बोली। आयुष रिदांश के पास जाकर बोला, आई विल मिस यू सो मच भाई। रिदांश ने आयुष के गले लगते हुए ब्लैंक एक्सप्रेशन से कहा, कुछ ही दिन की बात है, फिर वापस यहीं आ जाओगे, अब जाओ वरना देर हो जाएगी। टेक केयर। जी भाई, आयुष ने कहा। इसके बाद आयुष वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल गया। दूसरी तरफ मिस्टर कपूर अपने कमरे में इधर से उधर टहल रहे थे। उनके चेहरे से गुस्सा, झुंझलाहट, बेबसी साफ छलक रही थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे और ना ही कर पा रहे थे, और इसकी झुंझलाहट उनके चेहरे से साफ छलक रही थी। मिस्टर कपूर गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोले, नहीं नहीं, मैं इतनी आसानी से अपना सब कुछ यूं ही नहीं जाने दे सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी निकाली ये सब कुछ इकट्ठा करने में, मैं यूं ही किसी को भी अपना ये सब कुछ नहीं ले जाने दे सकता। मिस्टर कपूर अभी ये सब सोच रहे थे कि तभी कमरे में राहुल आया। राहुल ने नाराजगी से कहा, आप आरना के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि आप सब कुछ अच्छे से जानते और समझते हैं। मैंने आज तक कभी भी आपकी किसी भी बात को नहीं टाला, हमेशा आपकी हर बात को सर झुकाकर मानता आया हूँ, लेकिन इस बार आप और आपकी बात दोनों ही सरासर गलत हैं। आप कैसे आरना को उस नर्क में रहने के लिए छोड़ सकते हो? हाउ कैन यू डू दिस टू हर, जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि वो आपको कितना चाहती है और आपके लिए कुछ भी कर सकती है, उसके बावजूद भी आपने उसके लिए ये फैसला लिया। मिस्टर कपूर कुढ़ते हुए बोले, तो तुम क्या चाहते हो, कि मैं उसके प्यार के लिए सड़कों पर आ जाऊं, या फिर दर दर की ठोकरें खाते हुए भीख मांगूं? मैं बाप जरूर हूं, लेकिन इमोशनल फूल नहीं, और मैं अपनी इस दौलत और शोहरत को हरगिज इन बेकार के इमोशंस की बलि नहीं चढ़ा सकता। ये वक्त दिमाग से काम लेने का है, भावनाओं में बहकर बेवकूफ बनने का नहीं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आप चाहें जो कहें, लेकिन मैं आरना को वहां घुट घुट कर मरने और टॉर्चर होने के लिए हरगिज नहीं छोड़ सकता। राहुल ने कहा, तो फिर ठीक है, जो भी करना है वो करो, लेकिन मुझसे किसी भी तरीके की कोई भी उम्मीद मत रखना। मिस्टर कपूर गुस्से से बोले, आप अच्छे से जानते हैं कि जब तक आप उससे खुद आने के लिए सामने से नहीं कहेंगे, वो तब तक यहाँ हरगिज नहीं आएगी, फिर चाहे वो वहाँ ऐसे ही घुट घुट कर मर ही क्यों ना जाए। और चाहे जो भी हो, मैं उसे वो घर छोड़कर यहाँ आने और रहने की इजाज़त कभी भी नहीं दूंगा, मिस्टर कपूर ने कहा। इतना कहकर मिस्टर कपूर वहाँ से गुस्से से चले गए, और राहुल उनके जाने के बाद गुस्से से टेबल पर रखा गिलास जमीन पर दे मारा। दूसरी तरफ अगले दिन रिदांश सुबह तड़के ही किसी जरूरी काम से घर से निकल गया। उसके जाने के बाद रोज की तरह ही आरना सुबह का घर का काम करने के लिए नीचे गई, तो समांथा ने उसे रोकते हुए किसी भी काम को करने से मना कर दिया। आरना ने असमंजस से पूछा, क्या हुआ, आप मुझे काम करने से ऐसे क्यों रोक रही हैं? क्योंकि आज मास्टर ने आपको किसी भी काम को करने के लिए मना किया है, समांथा ने कहा। लेकिन क्यों, आर्ना ने पूछा। मास्टर ने कहा है कि आज आप आराम करें, क्योंकि कल रात आपकी तबीयत बिगड़ गई थी, इसीलिए आज उन्होंने आपको किसी भी काम को करने से साफ मना किया है और कहा है कि सिर्फ अपने कमरे में रहें, समांथा ने बताया। आर्ना समांथा की बात सुनकर असमंजस और हैरानी के मिले जुले भाव के साथ बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। आर्ना मन में सोच रही थी, मिस्टर अग्निहोत्री, आखिर क्यों आपको और आपकी बातों को समझना इतना मुश्किल और रहस्यमय सा है। दोपहर को आर्ना कल्पना जी को खाना देने के लिए नीचे आई, लेकिन रिदांश का ऑर्डर था कि वो अकेले में हरगिज उसकी माँ का ध्यान नहीं रख सकती और ना ही वो अकेले में उनके साथ रह सकती है, इसीलिए आर्ना के साथ कल्पना जी के कमरे में पूरे टाइम उसके साथ समांथा रही। ऐसे ही एक हफ्ता निकल गया और एक बार फिर से आर्ना का वही रोज का रूटीन शुरू हो गया था। बस फर्क इतना था कि अब उसके साथ खाने में रियायत बरती गई थी और अब उसे हर टाइम करेले ना देकर सामान्य खाना दिया जाने लगा था, जो बाकी किसी के लिए हो या ना हो, लेकिन आर्ना के लिए बहुत राहत और सुकून की बात थी। दोपहर को खाना खिलाने के बाद जब आर्ना कल्पना जी को उनके दवाइयां देकर वापस अपने कमरे में वापस जाने लगी, तो अनायास ही उसकी नज़र सोफे पर बैठी प्रिशा पर पड़ी, जो कुछ किताबों के साथ उलझी हुई दिखाई पड़ रही थी। ये देखकर आर्ना उसके पास गई। आर्ना ने पूछा, क्या हुआ प्रिशा, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो। प्रिशा ने परेशान होते हुए कहा, हाँ भाभी, मैं भाई का वेट कर रही थी। एक्चुअली में भाई इस सब्जेक्ट में मास्टर रहे हैं, तो मुझे जब भी कोई दिक्कत आती है तो मैं उनके पास ही जाती हूँ और वही अक्सर मेरी हेल्प करते हैं। क्या वाकई में, आर्ना ने थोड़ी हैरानी से पूछा। ऑफकोर्स भाभी, बिल्कुल, इसमें हैरानी की क्या बात, प्रिशा ने कहा। आर्ना ने मन में सोचा, अब तुम्हें कैसे समझाऊं प्रिशा कि एक राक्षस भी किसी की मदद कर सकता है, ये मेरे लिए तो क्या किसी के लिए भी हैरानी वाली बात ही होगी। प्रिशा ने कहा, अब देखो ना, आप ही मुझे कल रिसर्च मेथडोलॉजी का ये असाइनमेंट सबमिट करना है, लेकिन मैं इसके एक कॉन्सेप्ट पर आकर अटक गई हूँ और मैं कब से इसे समझने और सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये है कि समझ ही नहीं हो रहा। आर्ना ने प्रिशा के पास बैठते हुए कहा, लाओ मुझे दो, मैं देखती हूँ। आप सच में कर सकती हैं मेरी हेल्प, प्रिशा ने पूछा। आर्ना ने बुक उठाते हुए कहा, कोशिश करते हैं। आर्ना बुक उठाकर कॉन्सेप्ट को देखती है और कुछ ही देर में प्रिशा को समझाना शुरू करती है, और उसके समझाने का तरीका इतना आसान और सीधा था कि प्रिशा को लगा ही नहीं कि वो पिछले एक घंटे से इस कॉन्सेप्ट में उलझी हुई थी। कुछ ही देर में आर्ना ने उसके सारे डाउट क्लियर करके उसे वो पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया था। प्रिशा खुशी से बोली, वाह भाभी, आप तो जीनियस हो, आपने कितनी आसानी और जल्दी से सब सॉल्व करके मुझे ये कॉन्सेप्ट इतनी आसानी से समझा दिया, थैंक यू सो मच भाभी। आर्ना मुस्कुराकर बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं और मैं कोई जीनियस भी नहीं, बस हमेशा से ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, वो खुश होकर बोली। और पता है तुमको, लास्ट ईयर तो मैंने इसमें टॉप भी किया। मेरा हमेशा से एक ही सपना रहा है कि अपनी मेहनत और लगन के सहारे एक दिन में मुंबई की टॉप बिजनेस वूमेन बनूँ। वाह, प्रिशा खुश होकर बोली, मतलब यार आप तो सुपर टैलेंटेड और जीनियस हो, जब आप इतनी टैलेंटेड हो तो फिर आप आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू क्यों नहीं रख रही हो। आर्ना फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, जिंदगी में जो हम चाहते हैं वही हो, ये जरूरी तो नहीं ना। आपको जिसमें खुशी मिलती है और आपका दिल जो करना चाहता है, कभी कभी आप वो चाहकर भी नहीं कर पाते। क्या ऐसा करने से भाई ने आपको रोका है, प्रिशा ने आर्ना की तरफ देखते हुए पूछा। क्या फर्क पड़ता है कि उन्होंने मना किया या नहीं, जब मेरी जिंदगी पर ही मेरा अधिकार नहीं रहा तो अब मेरे सपने और सारी ख्वाहिशें भी सब बेमानी सी लगने लगी हैं, आर्ना ने कहा। इतना कहकर आर्ना प्रिशा के पास से उठकर चली गई और प्रिशा उसे जाते हुए देखकर सोचने लगी। प्रिशा ने मन में सोचा, सबको आप और भाई के दरमियान दूरियां और नफरत नजर आती है, लेकिन जाने क्यों हमेशा मेरा दिल आप दोनों को लेकर यही कहता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों, परफेक्ट फॉर ईच अदर। बस मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरे दिल की बात ही सच निकले, और जिस तरह से आज पूरी दुनिया इन दोनों की नफरत और दूरियों को लेकर बातें बनाती है, बस बहुत जल्द वो दिन आए कि यही दुनिया इन दोनों की मोहब्बत की मिसाल भी दे।